ओम शांति, ओम शांति। बहन जी ने परिचय तो दिया ही आप सबके सम्मुख, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा अवार्ड तो उन्होंने बताया ही नहीं, शायद रह गया होगा। कौन सा अवार्ड? क्योंकि अवार्ड तो लौकिक दुनिया में तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हमारा सबसे बड़े से बड़ा अवार्ड है हमें साकार ब्रह्मा बाबा और मामा की पालना मिली। इससे बड़ा अवार्ड हो सकता है कोई इस संगम युग में? इससे बड़ा तो अवार्ड कोई हो ही नहीं सकता। और ये अवार्ड तो कलप कलप के लिए नूंद हो गया, तो इसीलिए हम समझते हैं कि ये हमारा एक तो सबसे बड़ा अवार्ड है। और इन बड़े अवार्डों में भी सबसे हाईएस्ट श्रेणी का अवार्ड कौन सा है, कौन सा होगा? वो है हमारा अवार्ड जो शायद किन्हीं आत्माओं को नसीब नहीं होता, वो है कि हमें अपनी इन आँखों से बाबा की, ब्रह्मा बाबा की अंतिम कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला 17 और 18 जनवरी 1969 को। हम यहीं मधुबन में ही थे और बाबा के साथ ही साथ दो दिन तक पूरा रहे और दो दिन तक बाबा की संपूर्ण अव्यक्त कर्मातीत स्थिति देखने का मौका मिला। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? कोई नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम इसे भी अपना सौभाग्य समझते हैं। और आज का जो टॉपिक भी है ना, कौन सा टॉपिक है? बाप समान, क्या टॉपिक है? बाप समान स्थिति। तो इसीलिए उसके अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि इन कुछ बातों को समावेश कर लिया जाए, क्योंकि हम सभी को भी कर्मातीत स्थिति को तो पाना ही है। लेकिन सबसे पहले टॉपिक पर ध्यान दें, बाप समान कौन सी स्थिति, अंतिम स्थिति कहे, कर्मातीत स्थिति कहे, और बाप समान स्थिति कि जब हम बात करते हैं तो प्रश्न उठता है कौन से बाप समान? कितने बाप बाबा ने बताए हैं, कितने हैं पिता? वैसे तो तीन कहा है, लौकिक तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर बाप समान स्थिति यानी कि एक निराकार शिव बाबा और दूसरा साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो बाप समान स्थिति कैसे प्राप्त करें, तो ये मुख्य विषय है। और एक शब्द में अगर कहा जाए कि बाप समान स्थिति प्राप्त करने का तात्पर्य है कि शिव बाबा ने, निराकार शिव बाबा ने जो कहा और ब्रह्मा बाबा ने जो किया, जीवन में फॉलो किया, बस इन दोनों को अगर हम सदैव ध्यान में रखते रहेंगे तो ये स्थिति सदा प्राप्त होती चलेगी। तो चूंकि हमें बाबा के साथ रहने का लगभग 6-7 वर्ष मौका मिला, ब्रह्मा बाबा के साथ भी, तो इसीलिए उस बात को भी ध्यान में रखते हुए हम आज के टॉपिक पर आपस में शेयर करेंगे। तो यूजुअली लौकिक दुनिया में भी किस पर लौकिक माता पिता का भी प्यार ज्यादा होता है, और बाबा ने भी कई बार बताया, बाबा को वैसे तो सभी बच्चे प्यारे हैं, लास्ट में लास्ट बच्चा भी बाबा को बहुत बहुत प्यारा है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को पहचान लिया, इसलिए बाबा को लास्ट बच्चा भी बहुत प्यारा है। लेकिन बाबा को सबसे प्यारी चीज कौन सी पसंद है? सबसे प्यारी बात कौन सी पसंद है बाबा को? कई बार बाबा ने मुरलियों में बोला है, कौन सी बात? बाबा ने कहा है, बाबा को सबसे प्यारी बात जो पसंद है वो है सत्यता, सच्ची बात। इसीलिए गॉड को भी बोलते हैं ना, गॉड इज ट्रूथ, या कई बार ये भी बोल देते हैं, ट्रूथ इज गॉड। बाबा को सत्यता प्रिय है, और इसीलिए सत्यता की जब बात करते हैं तो भगवान का नाम भी है, क्या बोलते हैं शिव बाबा को? सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा जो है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है। इसीलिए बाबा को भी सबसे ज्यादा प्यारे वो बच्चे हैं जो सच्चे हैं। इसीलिए क्या स्लोगन बाबा ने दिया हुआ है जो हम सब बच्चे कहते हैं, भगवान किस पर राजी? सच्चे दिल पर साहब राजी। इसीलिए बाबा की अगर बाप समान स्थिति बनानी है तो हर व्यक्ति को वो व्यक्ति प्रिय होता है जो उस समान होता है, जिसके संस्कार उससे मिलते जुलते हैं, उसको वो व्यक्ति प्रिय होता है। तो भगवान को भी सबसे, चूंकि वो खुद सत्यता उसे सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए भगवान को भी वो बच्चे प्रिय हैं जो सच्चे हैं। एक तो ये बात बाबा ने हम बच्चों को बताई है, तो हमें भी बीच बीच में अपने अंदर हर बात में ये झांकते हुए चलना है कि जो मैं ये कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जो कुछ भी है, ये सत्य है कि नहीं? अगर वो बात सत्य है तो वो बाबा तक पहुँचती है, और बाबा कहते हैं मेरा वरद हस्त आशीर्वाद का हाथ बच्चों के ऊपर सदा रहता है। इसीलिए एक ये बात देखनी है, कोई भी सारा दिन भर में अनेकों बात करते हैं, अनेकों चीजें सोचती है, सोचते हैं, बोलते हैं। मुझे याद आता है ब्रह्मा बाबा से ना, जब हम लोग मिला करते थे साकार बाबा से, तो बाबा के पास जाते थे, बाबा देखते थे, और हाँ आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, ऐसे बाबा हाथ फैला देते थे, और हम सब बाबा की बाह में जैसे चुंबक की तरह खींचते चले आते थे एकदम। और जब आ जाते थे तो एक तो बाबा की बाहों में आ जाते थे, और दूसरा वो तो भगवान डबल आत्मा का पार्ट, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, तो जैसे ही उनका स्पर्श होता था क्या होते थे, हम विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। ब्रह्मा बाबा से तो बहुत बहुत बार मिलने का सौभाग्य मिला है इस आत्मा को, तो बस बाबा के बाहों में आते थे। और ऐसा क्यों होता था, क्योंकि बाबा खुद विदेही अशरीरी होकर बस देखते थे, ब्रकुटी में देखा, नैनों में देखा, आओ बच्चे आओ, आओ मीठी आत्मा आओ आओ, बस बाबा ने आत्मिक भाव से देखा और हम सब भी आत्म स्वरूप में तुरंत स्थित हो जाते। तो बाप समान बनने के लिए, बाप समान स्थिति को प्राप्त करने के लिए, एक तो हमें अपने को ये देखना होगा कि हम भी दूसरों को उसी स्थिति में देखते हैं, आत्मिक स्वरूप में। अगर हम उन्हें आत्मिक स्वरूप में देखेंगे, आओ मीठी आत्मा, आओ मीठे भाई, आओ मीठी बहने, बात करेंगे, बस जैसे ही हमारे नैन मुलाकात होगी उनकी भ्रकुटी में देखेंगे, हम चूंकि अगर आत्मिक स्थिति में हैं, तो वो आत्मा भी तुरंत आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएगी। इसीलिए आप सबने तो वो पढ़ा है ना, बाबा ने डायरी में लिख लिख के क्या पक्का किया था, क्या पक्का किया था, हाँ सभी परिवार का, जहाँ जहाँ व्यक्ति की बुद्धि जा सकती है, मैं आत्मा हूँ, निर्मला आत्मा है, उनकी बेटी जसोदा बाबा की युगल का नाम, हाँ, और नारायण बाबा के बेटे का नाम, सबका ये आत्मा ये आत्मा। तो जिससे बाबा को सदैव जब भी मिले, दिन भर में कोई कार्य करे, वो आत्मिक स्वरूप ही उन्हें, उनका शरीर न दिखे, आत्मिक स्वरूप दिखे। तो इसीलिए अगर हमें बाप समान स्थिति को प्राप्त करना है, तो एक बात तो ये करनी है, बाबा समान अभ्यास करना है। शुरू में ये बाबा ने कब करा था, 1936-37 में, जब बाबा ज्ञान में आए थे और बाबा देखते थे ध्यान में बैठे, मन भाग जाता है, बुद्धि भाग जाती है, तो बाबा ने क्या किया, उसकी विधि बाबा ने क्या बताई है, मन न भागे। अभी भी हम सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं, हर एक को भी अलग अलग समय हुआ है, कोई 5 साल 10 साल 20 साल 25 30 40 साल 50 साल के होंगे ज्ञान में, लेकिन मन तो अभी भी भाग जाता है। आधा घंटे अगर योग में बैठे, शायद कोई भी क्लेम नहीं कर सकेगा कि मेरा पूरा आधा घंटा योग लग गया। कहीं न चाहते भी, जहां पर हमारा ज्यादा अटैचमेंट होता है, जो कोई काम पड़ा होता है, अधूरा काम होता है, कई बातें होती हैं, किसी व्यक्ति के प्रति कोई इतने प्रेम की भावना नहीं होती है, तो क्या होता है, ऐसे ये सब व्यक्ति याद आएंगे और बुद्धि उधर भाग जाएगी। तो इसीलिए बाबा ने इसके लिए क्या बताया है, हम बच्चों को क्या करना है, बाबा ने खुद क्या करा, क्या करा बाबा ने, बाबा ने जब बाबा की बुद्धि भागती थी ना, तो बाबा ने देखा, अरे ये तो बुद्धि अभी भी मेरी भागती है, तो बाबा ने मन को पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, कर्मचारी है, लेकिन तू शक्तिशाली ज्यादा हो गया और तुमने मेरे मुझ आत्मा को कमजोर कर दिया, और मैं तुम्हारे पीछे पीछे तेरे कहने पर भागता रहा। ऐसी बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा, बाबा के पास दो डायरियां बाद में मिली, दूसरी डायरी में ये पत्र बाबा का लिखा हुआ था। वो हे बुद्धि, तुझे भी मैं कहता हूं कि तुमने भी मुझे जैसे भटका दिया। तू जिधर जिधर कहती रही, मन के साथ साथ भागती रही, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा। लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूं, हे मन, हे बुद्धि, अब मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये आभास हो गया है कि मैं आत्मा राजा हूं और तुम मेरे कर्मचारी हो। तुम्हें मेरे कहने पर चलना है राजा के, न कि राजा तुम्हारे कहने पर चलेगा। ऐसे बाबा ने उन्हें ऑर्डर किया, अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना है। इसीलिए बाबा रोज रात को दरबार लगाता था। दरबार लगाता था माने रोज रात को सोने से पहले मन, बुद्धि, संस्कार, और रोज रात को बाबा देखते थे आज मन ने मेरी कितनी बातों के ऑर्डर माना, कितना नहीं माना। आज बुद्धि ने कितनी बात का ऑर्डर माना, कितना नहीं माना, और संस्कार मेरे कहे बिना पुराने संस्कार जागृत तो नहीं हुए। तो मन, बुद्धि, संस्कार तीनों की दरबार लगाए तो बाप समान बनते चलेंगे। तो ये दूसरी बात। पहली बात तो सबको आत्मिक रूप में देखें, पक्का करें, जहां जहां बुद्धि जाती है वो उनको लिख करके, उनको बातचीत में, हर चीज में पक्का करें। और दूसरा, मन, बुद्धि, संस्कारों की दरबार लगाते चले, क्योंकि बुद्धि भागती ही वहां है, या तो जहां अति स्नेह हो या कहीं पर दुश्मनी हो, निर्बलता हो, मजबूरी हो, वहां पर बुद्धि भी भाग जाती है। इसीलिए अभी ये कर रहा है। तभी बाबा एक बात कहते हैं, याद होगा क्या बाबा कहते हैं? सबको देखो कि किसी से मेरा अति प्यार तो नहीं है कि मैं अपने मन की बात उससे शेयर करने बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, या सबसे मेरा किसी से ऐसे दुश्मनी तो नहीं कि वो सामने से भी आए और उसे बात करने की दिल ना हो, उससे नजर बचा के हम चले जाए और वो व्यक्ति से हम घृणा, ईर्ष्या, द्वेष कुछ करते चले। नहीं, दोनों में कोई भी बात अगर हुई तो बाप समान नहीं बन सकेंगे, संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। कबीर दास जी ने भी यही बात बोली है ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। न तो किसी से बहुत अति मित्रता हो कि उसको कुछ अपनी बात बताए बिना न रह सके, इंतजार करे वो मिले और हम ये शेयर करें, और न किसी से बैर कि उसको देखते ही हमारे मन में निगेटिव भाव आने लगे। तो जब ये ऐसी समान स्थिति हो जाएगी, इसीलिए गीता में भी कहा है, क्या कहा है गीता में, हर परिस्थिति में समान, मान अपमान, निंदा स्तुति, दुख सुख, हानि लाभ, जय पराजय, हार जीत, सब चीज में समान रहे। आत्मिक स्थिति एकदम समान रहे, खुशी रहे, तो क्या होगा? जब ऐसी स्थिति होगी ना, तो हम धीरे 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 अपने को देखते चलेंगे, बाप समान हम बनते जा रहे हैं। अभी जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए, मान की आए या अपमान की आए, दुख सुख, तो उसमें ये देखो, ना तो मैं मान में बहुत खुश हो गया एकदम, और न अपमान में मेरी स्थिति डावाडोल हुई। तो इसीलिए ऐसा हमें अपनी स्थिति बनानी है बस। और हाँ, ऐसी स्थिति कैसे बनेगी? गीता में भी अंत में बोला है ना एकदम कि हर परिस्थिति में समान रहें, उसमें ये स्थिति लाने के लिए हमें कौन सी स्टेज प्राप्त करनी पड़ेगी, कौन सी स्टेज प्राप्त करनी पड़ेगी अपने अनुभव से बताओ। बताइए अपना अनुभव कि जब बहुत खुशी की स्थिति हो और जब एकदम बहुत अपमान की स्थिति हो, दुख की स्थिति हो, ऐसा वातावरण हो तो क्या करना चाहिए, क्या करेंगे? क्या करेंगे? जैसे इसकी बजाय अक्सर करके एक मोटी बात समझो पहले इससे कि अगर कोई बात होती है, बचपन से ही हम वो बात भूल करते चले आ रहे हैं कि कोई भी बात हुई मुझे गुस्सा आया, अब गुस्सा तो मुझे आया लेकिन हम दूसरे पर ब्लेम कर देते हैं, पर इन्होंने ये किया तो मुझे गुस्सा आया, इन्होंने ऐसा किया तो मैंने ये रिस्पॉन्ड दिया, उंगली उधर उठाते हैं। और बचपन से हम ये सब कहते आए हैं कि भाई एक उंगली जब दूसरी तरफ उठाते हैं तो क्या होता है, हाँ अपनी तरफ भी कुछ उंगलियां इशारा करती हैं, अपने को देखो। तो इसीलिए किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, आपने सुना भी होगा कि जिंदगी भर हम एक ही भूल करते रहे। कौन सी भूल? ये गालिब ने कहा है कि जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। आईना होता है ना शीशा, उसे साफ करते रहे। हमने सोचा कि शायद आईना गंदा है इसलिए मेरी शक्ल खराब दिख रही है, लेकिन ये भूल गए कि भाई शक्ल ही जैसी होगी वैसा ही तो आईना दिखाएगा, धूल चेहरे पर होगी तो आईना वही दिखाएगा। तो इसीलिए अपनी तरफ हम देखें। बाबा भी यही बात बोलता है, बच्चे रोज इंट्रोस्पेक्शन करो, रोज डायरी लिखो, रोज अपना चार्ट लिखो, अपनी कमजोरी भी लिखो तो अपने गुण भी लिखो, ये गुण, ये महानता, ये अनुभव की इतनी बार क्रोध आया। शुरू शुरू में हम सब लोग चार्ट लिख के बाबा के पास नियमित रीति से भेजा करते, बाबा भी उसे देखता था। कई बार बाबा हल्का कर देता, बच्चे छोटी मोटी भूल है कोई बात नहीं।
स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया।
तो क्या बात चल रही थी कि अपना इंट्रोस्पेक्शन भी करो, अपने को अंदर रोज देखो, रोज अपनी भी दरबार लगाओ। और जैसे बाबा ने कहा है, बाबा खुद करता था और फिर धीरे धीरे मन के ऊपर विजय हो गई। और इसके लिए मुख्य क्या बात करनी है कि मन पर विजय प्राप्त हो। हम सब भी चाहते हैं, करते भी हैं, कई बार किसी शक्ति का आह्वान भी मानो हमारे और किसी के बीच में कुछ थोड़ी कहा सुनी हो गई, संस्कारों की भिन्नता हो गई, कोई बात ऐसी हो गई कि किसी को क्रोध आ गया, सहन शक्ति की जरूरत है आदि आदि, तो हम लोग भी ऑर्डर करते हैं, हे सहन शक्ति आओ, इस समय आप आके मेरी मदद करो। लेकिन कई बार नहीं आती। क्यों नहीं आती है? कोई भी शक्ति का हम गुण का आवाहन करते हैं, परिस्थिति होती है, बाबा कहता है उसे बुलाओ, ऑर्डर करो, लेकिन वो नहीं आती है। उसका मुख्य कारण ये है कि हम अपनी सीट पर सेट होकर के उसे ऑर्डर नहीं करते। कोई अपनी सीट पर अगर सेट नहीं होगा और ऑर्डर करेगा, कोई उसकी बात मानेंगे? कोई नहीं मानेगा। कोई भी ऑफिसर है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, जब तक सीट पर है सब उसकी बात मानेंगे। जब उसका ट्रांसफर हो गया, कहीं रिटायर हो गया, चला गया, तो जितनी भी बात वो बोलेगा कोई उसकी बात नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो सीट पर सेट नहीं है, उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। ऐसे ही बाबा ने हमें इतने सम्मान दिए हुए हैं कि उस सम्मान में पहले हम कुछ मिनट स्थित हो जाए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, कल पहले भी मैंने ये ऑर्डर किया था, ये शक्ति तुम आए थे और तुमने मुझे मदद की थी, मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति आई थी कि मैं इस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। और उसको आप अपने समानों को याद करो, मैं कलप कलप की विजयी आत्मा हूँ और अभी भी मैं विजयी बन करके दिखाऊ। जैसे ही अपने स्वाभिमान में स्थित हुए, उसके बाद ऑर्डर किया ना, वो शक्ति तुरंत आएगी। आप महसूस करोगे, हाँ भाई ये भले बोल रहा है लेकिन मुझे बोलने की जरूरत नहीं, बाबा ने कहा है, तुम सहन शक्ति को धारण करो, उसमें स्थित हो, उस आत्मा के प्रति शुभ कामना शुभ भावना रखो, अपने आप ही वो बात खत्म हो जाएगी। इसलिए बाबा, देखो ब्रह्मा बाबा हमें याद है, बाबा मधुबन में पांडव भवन में ऐसे तीन संदलियां पड़ी रहती थीं, एक पे बाबा बैठते थे, एक पे मम्मा बैठती थीं, बीच की संदली खाली रहती थी। तो बस बाबा ने मुरली चलाई और मुरली चला के फिर बाबा चले जाते थे। और जिस दिन गुरुवार होता था उस दिन मुरली चलाने के बाद गुरुवार के दिन वहां पर भोग रखा, जैसे सब जगह भोग बाबा को ऑफर करते हैं भोग रहता था। तो बस संदेशी जो होती थी, बाबा देखते थे संदेशी की तरफ, हाँ संदेशी, हाँ गोसून कमसून, ये सब खेल पाल हैं, इनमें कोई कमाई तो होती नहीं, तो जाओ और आओ। बस संदेशी भी जाती थी और जल्दी आ जाती थी, संदेश सुनाती थी। फिर क्या करते थे, बाबा भोग की डब्बी उठाई और भोग की डब्बी खोलते थे, खोल के उसमें जो भी भोग बनाया होता था, हलवा होता था या जो भी चीज, उसे हाथ में लिया और हाथ में लेके बाबा क्या कहते थे, आओ बच्ची, आओ आओ बच्ची। तो सब देखते थे बाबा किसको बुला रहा है, ऐसे करके बाबा कहते थे आओ बच्ची। और बस कहीं से भी, कहीं दिखती नहीं थी पहले से, बस कहां से वो एकदम छोटी सी चिड़िया आती थी और आते आते पीछे से चलते चलते आई, टेबल के पास खड़ी हुई, फिर टेबल पर बैठी, फिर टेबल से बाबा के हाथ पर आई, हाथ पर वो भोग बस लेती थी, हाँ एकदम, और हाथ पर भोग ले करके और बस चू चू चू, जैसे बाबा को थैंक यू बोल रही होगी, हाँ थैंक यू, ऐसे करके। और फिर वो चिड़िया जैसे उड़ जाती थी, चली जाती थी। और कई बार क्या होता था, एक दीवार पर घड़ी लगी हुई थी, पहले जमाने की घड़ी, तो उसमें पेंडुलम घड़ी, तो वो जब 7 होता है, 8 बजता है, 9 फुल आवर होता है, तो उसमें एक खिड़की सी खुलती थी, तो उसमें से अंदर से एक चिड़िया बाहर आती थी, मैकेनिकल चिड़िया, और वो बाहर आके कू 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 उतनी बार करती थी, 7 बजे हैं तो 7 बजे बार करेगी, 8, तो बस ये चिड़िया असली चिड़िया एकदम देखती थी उसे, ये कहाँ से आवाज आ रही है। तो कई बार अपना ये लेके एकदम उधर तरफ वो जाती थी, बाबा कहते थे देखो बच्चे, और वहां जाके उसको एकदम चोंच मारती थी जैसे, है ना। और वो तो भाई मैकेनिकल चिड़िया है, वो तो उसमें तो कोई चेतना की बात नहीं है, लेकिन ये चिड़िया जैसे कि ऐसे वहां जाके करती थी और फिर आती थी चली। तो बाबा कहते थे देखो बच्चे, ये कलयुगी दुनिया है, यहाँ सब आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं, भिन्नता रखते हैं, और देखो ये भी गई वहां पर वो करा, और जब देखा कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, अपना चली गई। तो हर चीज में बाबा कोई ना कोई बात का गुह्य रहस्य, सीधी सिंपल बात होती थी वो बाबा बताते थे। बाबा जब भी आते थे फूल लेके आते थे, देखो बच्चे ये फूल है, और बस बाबा का भी ये बगीचा है, वो बगीचे में तो जड़ फूल होते हैं, ये तो बाबा के चैतन्य फूल बैठे हुए हैं। ब्रह्मा बाबा बड़े प्यार से सबको ये दिखा के कहते थे कि देखो अलग अलग फूल होते हैं, कोई गुलाब का है, कोई गेंदे का है, कोई चंपा है, कोई ऐसे अलग अलग फूलों की बात बाबा करते थे। और फूल से अब आप बच्चों को भी ना ऐसा फूल गुलदस्ता तैयार करना है, पहले खुद फूल बनो, चैतन्य फूल बनो, खुशबूदार फूल बनो, और फिर उसके बाद ऐसा गुलदस्ता तैयार करके बाबा के पास लाओ। और वो कब होगा, खुद भी फूल कब बनेंगे, जब जब आप सबकी भी मानसिक स्थिति ना बहुत एक रस होगी। तो वो एक कवि की बात याद आ गई, आप लोगों ने भी सुना हुआ होगा, किसी ने कहा है फूल के लिए ना कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। सिंपल बात है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है जीवन के अंदर। तो जीत और हार तो होती रहेगी जीवन में, परिस्थितियां आएंगी, कभी जीत होगी कभी हार, लेकिन जीतने पर तो सभी खुश होते हैं, हार भी जाओ तो भी हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। तो बाबा यही कि हर परिस्थिति में हमारी मानसिक स्थिति समान रहे, ये बात बाबा के हमने देखा। बाप समान इतनी बड़ी बड़ी यज्ञ में घटनाएं हो जाती थी। एक बार कलकत्ता में मेला हुआ, हमारी प्रदर्शनी लगी थी, आर्य समाजियों ने दूसरों ने आग लगा दी, टेंट भी जल गया, प्रदर्शनी भी जल गई। तो हमारे कुछ बड़े पुराने वकील भाई होते थे कानपुर के, तो उन्होंने कहा बाबा हमें उन पर केस करना चाहिए, हमारे पास प्रमाण भी हैं, फोटो भी हैं, और हम 100% इस केस को जीतेंगे, जरूर करना चाहिए। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाप कभी भी बच्चों पर ऐसा केस नहीं कर सकता, बच्चे गलती करें कुछ भी करें, बड़ों का काम है क्या, माफ करना, क्षमा करना। और जितना जितना क्षमा करते चले जाएंगे उतना उतना महान बनते चले जाएंगे। तो इसीलिए आवश्यकता यह है कि कोई भी व्यर्थ का अगर संकल्प हो तो उस व्यर्थ के संकल्प को अब खत्म करना है। अभी भी बाबा ने, मुझे याद आता है कुछ साल पहले की बात है, जब गुलजार दादी जी की तबीयत थोड़ी ठीक थी, यहाँ हम बड़े भाइयों के, पुराने भाइयों की भट्टी चल रही थी, तो बाबा ने उस भट्टी में कहा था कि बाबा इन पुराने अनन्य रत्नों को देख करके एक सर्टिफिकेट तो इन्हें देता है। कौन सा सर्टिफिकेट? कि ये सब जो है इनमें विकारी संकल्प तो नहीं चलते हैं, निर्विकारी हैं, विकारी संकल्प नहीं, लेकिन अभी भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो अपने को भी देखो, भले हमें कुछ साल हो गए हों, पुराने होते जाते हैं, तो विकारी संकल्प तो हमसे दूर होते चले जाते हैं, विकारी संकल्प नहीं आएंगे, लेकिन व्यर्थ संकल्प आएंगे। अगर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, आदि आदि, तो व्यर्थ को अब धीरे धीरे निकालना है। कैसे निकालेंगे व्यर्थ में? एक मूर्तिकार की बात याद आती है, एक मूर्तिकार पत्थर में से बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था, सब लोग देख करके बहुत खुश होते थे, बहुत प्रेज अप्रिशिएट करते थे, अरे बहुत बढ़िया मूर्ति बनाई है तुमने, कैसे इतनी बढ़िया मूर्ति बनाते हो, कोई भी चीज दो हूबहू तुम बिल्कुल वैसी बना के रख देते हो। उसने कहा ये तो बड़ा सहज है, बस जहाँ जिस चीज में से मूर्ति बनानी होती है, वो पत्थर का टुकड़ा, वो मैं लेता हूँ और उसमें से चारों तरफ से मैं जितनी भी फालतू पत्थर है, जितने वे व्यर्थ है, उसको मैं निकाल देता हूँ, मूर्ति अपने आप ही अंदर से प्रकट हो जाती है। हमें व्यर्थ निकालना है, ऐसे ही हम सबके अंदर संपूर्णता की मूर्ति है, जो हम हैं वैसे नहीं है, हम संपूर्ण हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता की मूर्ति सूक्ष्म वतन में देखते थे संदेशियां जाकर के, ऐसे हमारे अंदर भी संपूर्णता की मूर्ति है, संपूर्णता है, गुण है, शक्तियां हैं, लेकिन वो चारों तरफ आवरण जो है ना, कहीं कहीं पुराने संस्कार, वो व्यर्थ का आवरण उस पर चढ़ा हुआ है। बस उस मूर्तिकार की तरह ये व्यर्थ का आवरण निकाल देंगे, अंदर से हमारी संपूर्णता की मूर्ति प्रकट हो जाएगी। ये ब्रह्मा बाबा ने यही किया। बस कहीं पर भी ये नहीं करा कि भाई ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, ये निकालना है। हर बच्चे को देखते थे, किसी में अगर 100 में से 99 अवगुण होंगे, एक गुण होगा, बस उस एक गुण की ही महिमा करते करते बाबा उसको महान बना देते थे। 99 अवगुणों की तरफ तो कभी वर्णन की बात तो दूसरी रही, बाबा का ध्यान भी नहीं जाता। तो इसलिए हम लोगों को भी हरेक के गुणों के ऊपर, हर व्यक्ति का भी एक संस्कार होता है, कोई उसकी महिमा करता है, अप्रिशिएट करता है तो उसे अच्छा लगता है, भूलता है, वो ऊंचा उठता जाता है। और अवगुण एक बोलो, दो बोलो, कुछ भी बोलो तो उसे एकदम ऐसा होता है कि ये मेरा निगेटिविटी अवगुण का वर्णन कर रहा है, और अवगुणों से वो और उसके अंदर कमी कमजोरियां बढ़ती चली जाती। तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए हमें क्या करना है, बाबा जो करते थे, कोई भी व्यक्ति, हमें याद है एक बार हम लोग देहरादून से आए थे, पार्टी आई थी, तो एक भाई जो है वो बहुत मतलब थोड़ा निगेटिव टाइप का था, सब जगह बहनों की परचिंतन और वो करता रहता था, निंदा करता था, कई बात ऐसी होती थी। तो बहन जी ने बाबा को बताया था, बाबा ये भाई ऐसा है, बहुत डिससर्विस करता है, और इसको आप थोड़ा सा बताना। तो सब आए, सब मिले, एक हफ्ते तक पार्टी रही। बाबा ने सबसे ज्यादा प्यार, सबसे स्नेह उस बच्चे को ही दिया। बार बार बाबा बुलाते थे, आओ बच्चे मेरे यहाँ, बाबा के पास बैठो, यहाँ भोजन करो, आओ बच्चे चलो बाबा के साथ टहलने चलो। बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया। तो जब जाने वाले थे, पार्टी गई, तो बहन ने बोला, बाबा आपने तो उसे ऐसा इतना वो दिया, वो तो अपना बहुत ही और भी ज्यादा ग्लानी करेगा कि नहीं बच्ची तुम देखना क्या परिवर्तन होता है। और उसके बाद जब वो गया, तब बहन जी का पत्र आया, बाबा उसमें तो बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया, उसके अंदर तो बिल्कुल वो अवगुण सब निकल गए, और अब वो पूरी तरीके से 100% सहयोगी है। तो सहयोगी को अगर उसको हम देखते हैं, कोई असहयोग करता है तो उसे हम असहयोग करेंगे तो वो और असहयोगी हो जाएगा। जितना भी बहुत वो असहयोग करता है उसे हम प्रेम दें, स्नेह दें, सहयोगी बने तो वो आत्मा में एकदम परिवर्तन हो जाएगा, और वो आत्मा बस संपूर्णता की तरफ चल पड़ेगी। इसीलिए बाप समान अगर बनना है, एक हमें ये देखते चलना है कि अगर कोई ऐसा है भी तो उसको हमें चेंज करना है। किस तरीके से, अपनी पॉजिटिविटी से, वो भले निगेटिव हो लेकिन मुझे अपनी पॉजिटिविटी से उसे चेंज करना है, पॉजिटिविटी देते चलना है। फिर और बाबा ने क्या, ये मन, हमारा सारा खेल ही मन का है। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जैसे शुरू में बताया था ना, सत्यता, तो पता कैसे चलेगा हम सत्य हैं? हमें अपने को भी तो निर्णय करने के लिए सत्यता का आवरण चाहिए, सत्यता का मापदंड, पैमाना चाहिए। तो बाबा ने कहा, एक तो पहचान ये है, क्या है, सच्चे दिल पर साहब राजी, भगवान राजी होगा। दूसरा जो सच्चा होगा ना, वो खुश रहेगा। सच तो बिठो नच, खुशी में नाचता रहेगा। भले उसकी नाव डोलेगी थोड़ी बहुत, सच की नाव डोले डोले लेकिन डूबे नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा कि जो सच होगा वो सत्यता के आधार पर, कल की मुरली भी थी ना, कल परसों की, सत्यता के आधार पर ही वो व्यर्थ का हम खात्मा कर सकते हैं। बस हम सत्य रहे, और अगर हम सत्य हैं तो कोई भी बात हमें हरा नहीं सकती। डोलेगी नाव लेकिन डूब नहीं सकती। इसीलिए ब्रह्मा बाबा का भी ये देखा, बाबा ने जब ये कहा कि नहीं उनपे केस नहीं कर सकते हैं, उन्होंने भले टेंट को जला दिया, तुम सावधानी रखो, तुम इंश्योरेंस करके रखो प्रदर्शनी का, अपने टेंट का सब, लेकिन उनपे ऐसे केस नहीं कर सकते। तो देखा, थोड़े समय तक वो देखते रहे, और जब उन्हें बाद में आभास हुआ तो वो लोग खुद आकर के उन्होंने माफी मांगी कि सॉरी हम लोगों ने ये करा, हम लोग बहुत गलत इम्प्रेशन में थे कि आप लोग ज्ञान भगवान के विरुद्ध चलते हो, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, आदि आदि ही ये सब बातें। तो उन्हें अपने ऊपर ये, इसीलिए हमें सबसे पहले जीतने की जरूरत है मन को। ब्रह्मा बाबा को मैंने जैसे बताया ना, अंतिम समय बाबा हमारा ये पुराना जन्म बिल्कुल भुला देना चाहता है। शरीर वही है, परिवार वही है, संबंध वही है, सब कुछ वही है, लेकिन पुरानी बातों को बाबा भुला देना चाहता है। इसीलिए बाबा किन्हीं के ऐसे वो होते थे, दादियों के नाम तो बदल दिए, काफियों के आपने सुना है, ऐसे ही बाबा बहुत बच्चों के नाम भी बदल देते थे, कईयों के। हमारा अपना ही अनुभव है, देखो बाबा से जब पहली बार मिले तो बस हमारा शारीरिक नाम एक्चुअली श्री है, श्री बोलते हैं ना, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, वो श्री। तो बाबा से जब पहली बार कानपुर में मिले थे, बाबा कानपुर में आए थे, तो बस बाबा से मिले, बाबा ने आओ बच्चे, बाबा बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बाबा ने ये बोला। तो हमने कहा हाँ बाबा, बस आने में देरी हो गई इसलिए लेट हो गए। लेकिन बाबा का भाव तो हमेशा बेहद का होता था, बच्चे बहुत समय से। तो दादियों ने बताया, बाबा कह रहा है 5000 वर्ष के बिछड़े हुए हो तो 5000 वर्ष के बाद आप बच्चे मिले हो, वो बाबा इंतजार की बात कर रहा है। फिर बाबा ने पूछा क्या नाम है बच्चे, तो हमने कहा श्री। तो बाबा ने कहा क्या बच्चे क्या नाम बताया, फिर थोड़ा लाउडली बोला, तो बाबा ने कहा अच्छा श्री। तो बाबा बड़ा जॉली स्वभाव का भी था, हाँ बच्चों के साथ बच्चे जैसा, और उस समय हमारी आयु तो 16-17 साल की थी, तब की बात है ये, तब हम ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी में कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो श्री देखो आओ दादी आओ, देखो आज बाबा को एक बच्चा मिला जो श्री है, बाबा से भी ऊंचा है। अब कोई हो सकता है बाबा से भी ऊंचा, ये तो जैसे उसको खींचने वाली बात हुई। तो बाबा हम तो देखते रह गए, क्योंकि तब नए नए कुछ महीने ही हुए थे ज्ञान में आए हुए। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे श्री तो उसके किसके नाम के आगे लगता है, कौन श्री कहला सकता है, देवी देवता लक्ष्मी नारायण, जिसका शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र। अभी न तो आत्मा पवित्र है, इतना 84 जन्म लेते लेते अपवित्र हो गई है, और शरीर भी विकारों की उत्पत्ति है, विकारों से पैदा होता है, इसलिए अभी न तो आत्मा पवित्र न शरीर। इवन ब्रह्मा बाबा भी देखो अपने को श्री नहीं लगा सकता। तो इसीलिए बाबा आज से तुम्हारा नाम, हाँ, तुम्हें श्री जैसा बनना है, आज से बाबा तुम्हारा नाम मोहन देता है। तो बाबा ने नाम बदल दिया, मोहन नाम कर दिया। तो भाव क्या, किसी का नाम होता था कुछ भी, कईयों में, सिंधियों में, औरों में नाम होते हैं, कोई कचड़ा मल होता है नाम, किसी का माया देवी नाम है। तो बाबा वो पुरानी बात भुला देता था कि नहीं, माया का अब क्या काम, अब तो लक्ष्मी जैसी बन रही हो, इसलिए ऐसा बनना है। तो बाबा ने भले सबका नाम नहीं बदला, क्योंकि सब मिले ही नहीं है बाबा से साकार से, लेकिन अपने को ये देखना है बाबा ने मेरा भी नाम बदला, यानी कि मेरे संस्कार बदले हैं। अब मुझे पुरानी एक्ट कोई नहीं करनी है, जो कलयुगी दुनिया की एक्ट हो, अब मुझे सतयुगी संगमयुगी दुनिया की एक्ट करनी। अपने को सदा उस रीति से वो याद रखते। और क्या करेंगे, हा? देखो, बाबा समान बनने के लिए बाबा ने धीरे धीरे, शुरू में जब बाबा को हम लोग मिलते थे, आओ बच्चे, बाबा घुमाने भी ले जाता था, बैडमिंटन भी खेलता था, टेनिस भी, और बहुत हंसी गुड्डी की बातें भी, लेकिन धीरे 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 बाबा अपने को समेटता जा रहा, बहुत कम बोलना भी होता था। और अंतिम दो दिन की बात मैं बताता हूँ कि बाबा अंतिम दो दिन, जब 17 जनवरी को हम पहुंचे, तो एक्चुअली हम ये बताना चाहते हैं कि जब ज्ञान में आए तब हम इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए गए हुए थे, और 4-5 साल बाद इंजीनियरिंग करने के बाद बाबा से पूछा, तो बाबा ने कहा, बच्चे, 3 जगह से ऑफर थे हमें अलग अलग, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट था, जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट था, और ONGC था, तेल निकालने की कंपनी। तो बाबा ने कहा, बच्चे, इस ONGC को ज्वाइन कर। लेकिन हमारी पोस्टिंग तो आसाम में हुई थी, इतनी दूर कोई भी सेंटर नहीं था, पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ये हम बात कर रहे हैं 1967, जिस साल हमने इंजीनियरिंग पास किया। तो पास करने के बाद उसमें सिलेक्शन हुआ, तो बाबा ने कहा कि बच्चे वहां जाओ, वहां बाबा के बहुत बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें संदेश देना है। तो वहां गए, और वहां बाबा का काम था, बस बाबा ने ही अपने आप कराया। बाबा कई बार बोलता है ना कि मैं जब देखता हूँ समझाने वाला उतना होशियार नहीं है, तो मैं भी उसमें प्रवेश करके समझा देता। तो वहां पर गए, और वहां जैसे जैसे बाबा कहता था, लेक के पास जाओ, वहां चित्र खोल के बैठ जाओ, मंदिर शिव सागर जगह है, तो शिव सागर बहुत बड़ा लेक है, मंदिर बहुत बड़ा है, वहां मंदिर में जा करके वहां चित्रों पर समझाओ, आदि आदि। तो हम देखते थे कि हम समझाते थे, लोग सुन के चले जाते थे, आते थे, लेकिन बाबा को अपना काम करना होता है, तो कईयों का उसमें से ध्यान का पार्ट खुल गया। छोटी छोटी कन्याएं थीं, कोई 6-7 साल के थे, 8 साल के थे, बस वो ध्यान में चले। और इस तरह वहां सेवा को बहुत बहुत बल मिल गया, बढ़ गया। तो इसीलिए निमित्त आत्माएं या बाबा कोई भी अगर बात बोलता है, सेवा देता है, तो हमें बिना सोचे समझे हाँ कर देना है। फिर बाबा को कैसे वो कार्य कराना है, वो बाबा ही जानी जाना ना रहे, बाबा ही उस कार्य को कराता है। तो अंत में मैं बता रहा था कि 17 जनवरी को हमें बस बाबा ने बुला लिया, और आसाम से हम आए, 17 जनवरी की सुबह पहुंच गए, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की कर्मातीत अवस्था देखी, अव्यक्त स्थिति देखी। क्या देखा उसमें? सबसे पहली बात तो ये देखी, बस बाबा के सामने हमेशा जाते थे, हमेशा बाबा कहा बच्चे आओ, कैसे हो, क्या सर्विस चल रही है, सब पूछते थे। लेकिन इन दो दिनों में बाबा ने बस ऐसे ही दृष्टि दी, और दृष्टि दे के बाबा ने दृष्टि से ही मन की बात जान ली। ये कर्मातीत अवस्था की निशानी है कि किसी के भी मन की बात को जान लेना, उसके नैनों से, उसकी भ्रकुटी से। बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। बाबा प्रश्न भी बता देता था, क्या पूछने आए हैं उसका समाधान भी दे देता। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार, हर बार ऐसा हुआ। तो कर्मातीत अवस्था की आत्मा की एक निशानी ये है कि दूसरे के मन की बात को वो तुरंत जान जाएगा। और ये कब होगा? जब उसने अपना मन जीता हुआ हो। अपना मन अगर जीता हुआ नहीं होगा तो दूसरे के मन की बात को नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि उसमें अपने मन की बात मिक्स हो जाएंगी, तो सही बात तो आएगी नहीं। तो इसीलिए अगर हम भी चाहते हैं कि लोग आए देखें, क्योंकि अंत समय में बाबा ने कहा कि ऐसी स्थिति आएगी, लोग आएंगे चारों तरफ हाहाकार, चारों तरफ अति हलचल, और आपकी आंतरिक स्थिति अति अचल। बाहर हलचल होगी, अंदर आप बिल्कुल अचल होंगे। इसलिए उस अचलता का अभ्यास अभी से ही बच्चों को करते चलना है, क्योंकि समस्याएं तो सबके पास आती हैं, और तीन प्रकार की समस्या ज्यादातर कही जाती है। कौन सी समस्याएं? कोई भी धन की समस्या हो, कोई अलग अलग, उन्हें कहा जाता है आदि, व्याधि और उपाधि। शरीर की समस्या हो, परिस्थिति की समस्या हो, संबंधियों की समस्या हो, कोई भी दुनिया की समस्या हो, इन तीन कैटेगरी में आती है आदि, व्याधि, उपाधि। और इसका उपाय है समाधि। समाधि माने अंदर एकांत में अंदर चले। मुझे एक बात याद आती है कि एक व्यक्ति था, वो राजा के दरबार में गया कि राजन मुझे ये दान पात्र है, छोटा सा दान पात्र था, इसमें दान दे दीजिए। तो राजा ने कहा हाँ क्यों नहीं, दान मिल जाएगा। उसने अपने मंत्री को बोला कि जाओ राजकोष में से इसको दान लाके दे दो, भर दो इसका पात्र। वो गया मंत्री, लेकर के आया, वो डाला, भरा नहीं, दोबारा गया, फिर लाया, डाला। कितनी बार अंदर गया, देखने में तो दान पात्र छोटा ही था लेकिन वो भरता नहीं था। तो राजा ने कहा अरे इसके अंदर जरूर कोई रहस्य है, बात है। तो उसने उसको प्रणाम करके कहा महाराज जरूर इसके अंदर कोई रहस्य है। क्या रहस्य है? ये भरता ही नहीं, इतनी बार मंत्री ने लाके इसके अंदर डाला। तो उसने क्या कहा कि महाराज ये जो दान पात्र है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है, सिर का बना है, और यहां मन होता है उसका, तो मन का ये संस्कार है, स्वभाव है कि मन कभी भी तृप्त नहीं होता। मन में एक इच्छा पैदा होती है, वो पूरी करो, दो इच्छाओं का जन्म हो जाएगा, दो इच्छा पूरी करो, चार इच्छाओं का जन्म हो जाएगा। इसीलिए ये पात्र जो है मन का बना हुआ है, खोपड़ी का बना हुआ है, ये कभी भी तृप्त नहीं होगा। तो मन तो ये अंदर की चीज है, तो इसीलिए अभी आवश्यकता ये है कि मन को हम जीते, मन जीते जगत जीत, और मन को इसीलिए कहते हैं बाहर से भी हम खुश रहेंगे, मन खुश रहेगा, चेहरे पर भी खुशी आएगी, चेहरे पर खुशी होगी, मन खुश होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। ऐसे ही एक व्यक्ति एक साधु के पास गया। साधु के पास चार पांच चेले पहले ही बैठे हुए थे। वो बैठ के साधु कुछ ज्ञान सुना रहा था, तो ये व्यक्ति भी बैठ गया। थोड़ी देर में अर्थक्वेक आया, भूचाल, बड़ी तेजी से भूचाल आया। तो वो साधु का ऊपर टीन का छपरा वगैरह पड़ा हुआ था, वो बहुत खड़खड़ खड़खड़ करने लगा, उड़ने लगा, और लगा कि इससे तो बहुत हानि हो जाएगी। और जो और चेले आए हुए थे वो भी गए। वो भागने के बाद फिर क्या हुआ? भागे तो उन्होंने कहा सबने, महाराज आप भागो, बाहर आओ, ये तो एकदम कभी भी आपका वो छपरा गिर सकता है, बहुत नुकसान करेगा, आओ आओ। लेकिन महाराज वहीं बैठे रहे साधु सब। थोड़ी देर के बाद जब शांत हुआ अर्थक्वेक भूचाल, तो सब लौट के आए। तो उन्होंने कहा महाराज आपको डर नहीं लगा? आप तो यहीं बैठे रहे और हम लोग तो बाहर भागे, कहीं पर ये चोट न लगे। तो उसने कहा नहीं, तुमने देखा नहीं, तुम भी भागे, मैं भी भागा। कहा महाराज आप भागे, हमने तो देखा ही नहीं। फर्क ये था कि तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा, अंदर। और अंदर मैं एकांत में जाके मन को मैंने समाधिस्थ किया, और अंदर बस हमें भी कोई परिस्थिति हो, कोई बात आए, बाहर की बातें तो करें लेकिन अंदर भी भागने का अभ्यास। अंदर एकदम जब शांति में पहुंचेंगे तो अंदर भागने के अभ्यास से उसका बात का सॉल्यूशन मिलेगा, सही जवाब मिलेगा। और वो सही जवाब से क्या होगा, अंत में जब विकट परिस्थितियां आएंगी, चारों तरफ पांचों तत्वों की अथाह हलचल होगी, तो हमारा अंदर का जवाब ही तब हम कैच कर सकेंगे। बाबा तो टच करता है लेकिन हम कैच नहीं कर पाते। बाबा ने एक बार बताया था एक मुरली में, बाबा के पास हर बच्चे का टीवी है, टीवी होता है ना, हर बच्चे का टीवी है। जब कभी भी किसी बच्चे में कोई कमजोरी होती है, कोई ऐसा संकल्प आया, विकारी संकल्प आया, कोई स्थिति उसकी कमजोर हुई, तो उसका टीवी ऑन हो जाता है। वैसे ऑफ है सबके टीवी, लेकिन जिस बच्चे में कोई कमजोरी आई उसका टीवी ऑन होता है और बाबा देखता है इस समय इस बच्चे में ये कमजोरी है, तो बाबा ऊपर से उसे सकाश देता है, लाइट देता है, शक्ति देता है कि बच्चा इस कमजोरी से बाहर निकले। लेकिन कई बच्चे तो उस बात को पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, जिनकी बुद्धि थोड़ी क्लीन होती है और क्लियर होती है, वो तो उसे कैच कर लेंगे। लेकिन कई बच्चे उसे टाल देते हैं और उससे क्या होता है, जो कैच करके शक्तिशाली बन जाते हैं वो तो उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो उस बात को टाल देते हैं ये संकल्प, तो वो हार खा लेते हैं। और हार खाने से क्या है, फिर कलप कलप के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए उनकी हार हो जाती। तो बाप समान अगर हम बनना चाहते हैं, जो जैसा प्रश्न है, जैसा टॉपिक, तो उसके लिए हमें अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर ऐसा रखना होगा कि बाबा जब भी जो टच करे वो हम कैच करें। और उससे क्या होगा, अंत समय सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि हमें सोचना नहीं पड़ेगा ये करूं या ये करूं, अर्थक्वेक आया तो नीचे जाऊं या टेबल के नीचे शेल्टर लूं या उतरूं सीढ़ी से, क्या करूं, नहीं। ऑटोमेटिकली पैर उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, ऑटोमेटिकली। इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा ये करूं या ये करूं। बाबा टच ही वो कराएगा जो सही रास्ता होगा और जिसमें सफलता हो। इसीलिए जीवन में सदा सफल रहने के लिए हमें ये ही करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें खुद ही अपना अर्जुन बनना है और खुद ही कृष्ण बनना है। अपने मन को बस ऐसा करना है बाबा की तरह। तो मैं बस अंतिम बात बता के पूरा करूंगा कि 17-18 जनवरी को जब बाबा के पास जाते थे तो बाबा ये देखता था, दृष्टि दी, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो ऐसा हो जाए, प्रश्न भी बता देता था उत्तर भी। ये कर्मातीत अवस्था की निशानी है। और इस तरीके से जो भी कोई पेंडिंग काम अगर रहा हुआ हो ना, वो हम पूरा कर ले, कोई भी पेंडिंग काम को हम छोड़े नहीं। बचा पेंडिंग माने बचा हुआ काम, क्यों? क्योंकि अंत समय याद ही वो आता है, कोई काम अधूरा रह गया होगा, अरे मैं ये कर लेता था, ये नहीं कर सका, सोचता रहा कल करूंगा कल करूंगा और नहीं करा मैंने ये ऐसा। तो इसीलिए बाबा कहता है उस पर बच्चों का ध्यान। इसीलिए बाबा ने अंतिम दिन भी क्या करा, जो बचे हुए पत्र थे सबके उत्तर लिखे, एक भी पत्र नहीं रह गया। अंतिम दिन बाबा ने नक्की लेक का जो म्यूजियम है, वो म्यूजियम पेंडिंग पड़ा था, उस पर साइन करे कि ठीक है वो बिल्डिंग ले करके उसमें म्यूजियम सेवा का स्थान बनाओ आदि आदि। और सबसे बड़ी बात, रोज क्लास 9 बजे होती है रात को मधुबन में, लेकिन उस दिन बाबा ने कहा आज बाबा 7 बजे ही क्लास कराएगा, इसीलिए सभी बच्चे भोजन आदि करके 7 बजे तक क्लास में पहुंच जाए। तो सब बच्चों ने भोजन वगैरह किया और वहां पहुंच गए। तो अंतिम दिन बाबा की ये स्थिति थी कि एक बार भी न बाबा को खांसी आई, न एक बार भी कफ साफ करने की जरूरत पड़ी। वो इस बात का प्रतीक है कि कर्म भोगों के ऊपर, शरीर के कर्म भोग के ऊपर योग बल ने जैसे संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर। हमें भी यही देखना है, अगर कोई काम पेंडिंग रहा, क्योंकि जब बाबा से बच्चों ने पूछा बाबा आपकी अंतिम स्थिति क्या थी जब आप शरीर छोड़ रहे थे, वो बताओ आप, तो बाबा ने बताया बच्ची क्लास करा के जब बाबा आया तो यहाँ पेन हो रहा था हार्ट में, वो पेन बढ़ता जा रहा था, बहुत बढ़ता जा रहा था, तो बस बाबा देख रहा था साक्षी होकर के पेन बढ़ रहा है। दूसरी तरफ बाबा को याद कर रहा था, बाबा बस मैं आत्मा आपके पास आई की आई, मैं आ रही हूँ और ये पेन जो है, दर्द जो है, दर्द फिर धीरे 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 कम होता चला गया। जैसे जैसे योग की स्थिति बढ़ती चली गई बाबा की, दर्द कम होता चला गया। और फिर उस प्रकार से बाबा ने अंत में दादी के हाथ में हाथ नैन मुलाकात करते हुए शरीर छोड़ा। लेकिन मन जीते जगत जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनना पड़ेगा। किस तरीके से कि बाबा का शरीर 18 जनवरी की रात को छूटा और ये बाबा का शरीर जो है ना, रखा रहा 18 की रात, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 की सुबह के बाद दोपहर 2 बजे संस्कार किया गया। क्योंकि बड़ी दीदी मनमोहनी दीदी बाहर टूर पर गई हुई थी, उनका सब इंतजार कर रहे थे, वो जब आई उसके बाद संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर बिल्कुल वैसा ही रहा, न कोई इंजेक्शन दिया गया, न कोई केमिकल लोशन लगाया गया, कुछ नहीं, वैसा ही चमकता रहा, कोई दुर्गंध नहीं आई, कोई काला नहीं पड़ा। तो ये मन जीते के साथ साथ हमें प्रकृति जीत भी बनना पड़ेगा। इसीलिए जब बाप समान बनने की बात है तो बाबा दोनों चीजों में, मन जीते जगत जी, वो तो हम सब लोग योग कर ही रहे हैं, योग कर रहे हैं, ज्ञान धारणा सेवा वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रकृति के पांच तत्व है ना, इन तत्वों को भी रोज हम कम से कम भी 5-7 मिनट 10 मिनट रोज योगदान करें, उन तत्वों के साथ हम बातें करें, तत्वों के साथ अपने संस्कार मिलाते चले, और जितने जितने तत्वों के साथ संस्कार मिलते चले जाएंगे उतना उतना ये तत्व अंत समय हमें सहयोग देंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा को उन्होंने अंत समय सहयोग दिया, पूरा का पूरा ब्रह्मा बाबा के कहने तक जैसे कि वो रुके रहे और फिर बाबा ने शरीर छोड़ा। तो अंत समय हमें भी अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्णन करना है, ये नहीं कि बिल्डिंग एकदम अर्थक्वेक आया, हिलिए और छत गिरी और दीवार गिरी, सब मरे, हम भी मर गए उनमें, तो हम में और दुनिया में फर्क क्या हुआ। हमें भीष्म पितामह की तरह अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना है, और वो इच्छा से तब होगा जब इन पांच तत्वों के साथ हमने अपने संस्कार मिलाए हुए होंगे, क्योंकि जिनके संस्कार एक दूसरे से मिले होते हैं ना, वो सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तो इसीलिए ये तो लंबी क्लास है, इसको अभी नहीं करते, लेकिन तत्वों के साथ हमें अपने संस्कार, मानो जल तत्व है, शीतल एडजस्टमेंट की ताकत है, तो हम सबसे एडजस्ट होकर चलना सीखे। वायु तत्व है, हल्का होता है, ऊपर उड़ाता है, हम जीवन में सदा हल्के रहना सीखे। और पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, पृथ्वी क्या है, दाता है, पृथ्वी से अन्न जल तेल मिट्टी सब चीज, सब्जी फल सब मिलता है, ऐसे पृथ्वी की तरह हम दाता बनते चले। दाता माने हर एक को सहयोग दें, प्रेम दें, शांति दें, स्नेह दें, कोई भी स्थूल चीज देने की बात नहीं है, आकाश की तरह हम विशाल बन जाए, किसी की कमी कमजोरी को दिल में न रखें, क्षमा करते चले। और सूर्य यानी अग्नि, अग्नि का संस्कार होता है हर चीज का रूप बदलना, तो मेरा भी ऐसा ही रूप हो कि कोई अगर आए उसका रूप हम बदल सके, रोता हुआ आए बस हमारे अग्नि स्वरूप को देखे और हंसता हुआ चला जाए, दुखी आत्मा आए शांत स्वरूप का अनुभव करते चले। तो इस तरीके से ब्रह्मा बाप अंत समय तक इन दोनों चीजों पर, मन पर और प्रकृति पर विजय प्राप्त की, और इसी तरह हमें भी यही विजय प्राप्त करके बाप समान संपूर्ण बन के घर चलना है। ओम शांति, ओम शांति।
का।